पाठ 10 अध्याय 12 निर्गमन का यह अध्याय अपने आप में एक पुस्तक है। यहां फसह पेशाच का त्योहार या अध्यादेश स्थापित किया गया है। वास्तव में एक और परमेश्वर निर्धारित पर्व अखमीरी रोटी का त्योहार भी निर्धारित किया गया है। महत्वपूर्ण विवरण और समय और कौन भाग ले सकता है और कौन नहीं, इसका वर्णन किया गया है और वे विवरण समृद्ध और आध्यात्मिक अर्थ से भरे हुए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे।
लेकिन इस अध्याय में परमेश्वर के उस आदेश का पालन भी शामिल है कि वह अपने हाथों से मिस्र के सभी पहलौठों को मार डालेगा, लोगों और पशुओं को, और ये इज़राइल के लोगों द्वारा अपना सामान समेटकर मिस्र से जल्दी से निकल जाने के साथ समाप्त होता है, जो हमें एक बार फिर इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि कौन गया, कितने लोग गए और वे कहां गए।
अब निर्गमन के इस 12वें अध्याय में निहित महत्वपूर्ण तथ्यों और अर्थ को समझने के लिए, अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, यदि हम इसे 5 भागों में व्यवस्थित करके देखें तो यह सहायक होगा।
पद 1 से 14 तक परमेश्वर मूसा को प्रथम फसह की स्थापना के विवरण के बारे में निर्देश दे रहा है। पद 15 से 20 तक भविष्य की ओर देखते हैं, क्योंकि ये विवरण भविष्य के फसह उत्सव के लिए हैं। 21 से 27 में मूसा लोगों को, वास्तव में इज़राइल के पुरनियों को, वह सब बताता है जो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। पद 28 में इज़राइल के लोगों के मूसा और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने का वर्णन है।
अध्याय के अंत तक की 29वीं पद उस भयंकर रात की भयावहता का वर्णन करती है जब इज़राइल के खातिर यहोवा ने हजारों हजारों मिस्र के पहलौठों, मानव और पशु को मार डाला था, और फिर मिस्र में कैद से इब्रानियों के निर्गमन के पहले चरणों का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, अध्याय 12 पूरा पढ़ें।
पद 1 हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि पेशाच फसह का यह पर्व कब और कहां से शुरू हुआ, लेकिन पद 2 हमें कुछ भ्रम में डाल सकता है यदि हम सावधान न रहें, क्योंकि ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहूदी कैलेंडर वर्ष की स्थापना कर रहा है। आप में से जो लोग यहूदी कैलेंडर और 7 वार्षिक पर्वों के बारे में थोड़ा जानते हैं, वे जानते हैं कि फसह एक वसंत ऋतु का त्योहार है। फसह यहूदी महीने अबीब में होता है, जैसा कि इसे पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसे निसान के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्ष के 12 महीनों के नाम मूल रूप से इब्रानी थे, लेकिन निर्वासन के लगभग 800 साल बाद बेबीलोन में अपने निर्वासन के दौरान यहूदियों ने महीनों के नाम इब्रानी से बेबीलोन के नामों में बदल दिए। यहूदियों के कुछ संप्रदाय प्रत्येक महीने के लिए अधिक प्राचीन मूल इब्रानी नामों पर अरे हुए हैं, लेकिन अधिकांश संप्रदाय अधिक सामान्य बेबीलोनियाई नामों को स्वीकार करते हैं। हालांकि इब्रानी बनाम बेबीलोनियाई वह भ्रम का विषय नहीं है जिससे मैं चिंतित हूं। स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने पद 2 में इज़राइल को बताया कि यह फसह का महीना निसान वर्ष का पहला महीना होना चाहिए। इसलिए कोई सोच सकता है कि वर्ष के पहले महीने का पहला दिन नए साल का दिन माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस तरह हम आज जूलियन कैलेंडर का पालन करते हैं जिसके अनुसार जनवरी वर्ष का पहला महीना होता है, उसी तरह 1 जनवरी को हम नए साल का दिन मनाते हैं जिस दिन एक नया साल शुरू होता है। हालांकि यहूदी नववर्ष रोश हशनाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ष का मुखिया, यहूदी कैलेंडर के पहले महीने निसान के पहले दिन और पद 2 में यहां संदर्भित महीने में नहीं होता है। वास्तव में रोश हशनाह फसह के कई महीनों बाद तिशरी के महीने में, पतझर तक भी नहीं होता है। तो क्या हुआ?
वैसे यहूदियों के पास वास्तव में कई तरह के नए साल होते हैं, जैसे हमारे पास एक चक्र होता है जो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को कैलेंडर वर्ष को चिन्हित करने के लिए समाप्त होता है। अगर आपका कोई व्यवसाय है तो आपके पास एक वित्तीय वर्ष भी होता है जिसे आप किसी भी महीने में शुरू कर सकते हैं, और इसका मुख्य रूप से कराधान और लेखांकन उद्देश्यों से संबंध है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप जानते हैं कि स्कूल वर्ष 1 संस्थान से दूसरे संस्थान में अलग अलग हो सकता है। यह कुछ हद तक मनमाना है और कभी कभी बदल भी जाता है, और निश्चित रूप से न तो किसी व्यावसायिक वित्तीय वर्ष से जुड़ा है, न ही 12 महीने के कैलेंडर के नए साल से। अगर आप किसान हैं तो आपका वर्ष कृषि के चक्रों पर अधिक आधारित है, और चूंकि सभी इब्रानी त्यौहार कृषि पर आधारित हैं, इसलिए वे जरूरी नहीं कि सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष के अनुरूप हों, बल्कि यह मौसम के चक्र के बारे में अधिक है। और ऐसे और भी कई तरह के वार्षिक माप हैं जिनका मैं उदाहरण के तौर पर उपयोग कर सकता हूं। इसीलिए यहूदी कैलेंडर में निशान, जैसा कि यहां पद 2 में वर्णित है, को राजाओं और रानियों के शासनकाल के वर्षों की गणना करने का महीना माना जाता है, और यह यहूदी धार्मिक कैलेंडर का पहला महीना है। एलुल अगस्त का यहूदी महीना वार्षिक दशमांश चक्र शुरू करता है, जब जानवरों का दशमांश देने की बात आती है। शेवत फरवरी का महीना वार्षिक चक्र शुरू करता है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि पैर की फसल के कौन से फल खाए जा सकते हैं और उनका दशमांश दिया जा सकता है। तिसरी का पहला दिन, जिसे रोश हशनाह भी कहा जाता है, यहूदी नव वर्ष का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वर्ष की गिनती कब बदलती है। यही है जब 1 जनवरी को सुबह 12:01 हम 2002 से 2003 में जाते हैं, और फिर अगले वर्ष 2003 से 2004 में, और इसी तरह। इसलिए हर 12 महीने में नए साल के पहले दिन वर्ष की गिनती 1 से बढ़ जाती है। बहुत आसान है। वैसे यहूदियों के पास एक खास महीना होता है जिसके अनुसार वे कैलेंडर वर्ष बदलते हैं, लेकिन यह निसान का महीना नहीं है, जबकि यह यहूदी कैलेंडर का पहला महीना है। बल्कि यह कुछ हद तक कैलेंडर वर्ष का मध्य है, जिसमें यहूदी वर्ष की गिनती को 1 से आगे बढ़ाते हैं, और यह वह महीना भी है जिसमें वे अपने कैलेंडर में दिन या सप्ताह जोड़ते हैं समय समय पर। क्योंकि वे आधार के रूप में चंद्र कैलेंडर का उपयोग करते हैं, इसलिए अपने कैलेंडर को सटीक रखने और अधिक आधुनिक सौर कैलेंडर वर्ष के अनुरूप रखने के लिए हर कुछ वर्षों में समायोजन करना पड़ता है। यह सब विस्तार से याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाइबल का कैलेंडर हमारे वर्तमान अच्छे और साफ सुथरे सौर आधारित 365 दिन और एक चौथाई दिन के कैलेंडर जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम बाइबल में त्योहार के दिनों की स्थापना या विशिष्ट घटनाओं की तिथियों, या जब यह बात आती है कि किसी निश्चित राजा ने कितने समय तक शासन किया, तो आपको यहूदी कैलेंडर प्रणाली के संदर्भ में सोचना होगा, न कि हमारी आधुनिक दिन प्रणाली के संदर्भ में। तो हम जानते हैं कि पहला फसह यहूदियों के मिस्र छोड़ने से पहले की रात को मनाया गया था, वसंत ऋतु में, जिसे हम अप्रैल के आसपास मानते हैं। और पद 3 में यहूदी चंद्र कैलेंडर के आधार पर परमेश्वर इज़राइल को निर्देश देता है कि निसान महीने के 10वें दिन फसह से 4 दिन पहले उन्हें चुनना है, मारना नहीं, बस चुनना है, फसह की बलि के लिए इस्तेमाल होने वाला मेमना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे इस मेमने के बारे में कुछ मिथकों को दूर करने दें। सबसे पहले, यह एक नर मेमना होना चाहिए। दूसरे, यह 1 वर्ष का होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम किसी प्यारे रोएदार छोटे शिशु प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं जिसे उसकी मां से छीन लिया गया है। यह ऐसा जानवर नहीं है जिसे आपका किंडरगार्टनर अपने साथ लेकर घूम सके। 1 वर्षीय नर भेड़ को राम कहा जाता है। उनके पास सींग होते हैं, उन्होंने एक निश्चित मात्रा में आक्रामकता एक भेड़ के लिए विकसित की है, और वे बहुत बड़े हैं, शायद 50 पाउंड। इसके अलावा वे परिपक्व हो रहे हैं, अपने यौवन के करीब पहुंच रहे हैं। किस्म के आधार पर भले ही एक नर भेड़ लगभग 5 साल तक बढ़ना जारी रखेगा, अधिकांश विकास पहले वर्ष तक हो चुका होता है। 1 वर्षीय नर भेड़ एक वयस्क है जो पूरी तरह से प्रजनन करने में सक्षम है, और संभावना है कि वह पहले से ही मेमनों को जन्म देने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। आम तौर पर आप जिस भेड़ को खा रहे हैं उसकी उम्र लगभग 6 महीने से ज्यादा नहीं होती। तो आइए हम बच्चों की किताबों में मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब की तस्वीरों को अपने दिमाग से निकाल दें, या जब हम उस जानवर के बारे में सोचते हैं जिसे परमेश्वर ने बलि चढ़ाने का आदेश दिया है, तो मांस काउंटर में उस पारदर्शी सेलोफेन आवरण के नीचे क्या छिपा है। और
ये कोई बीमार मेरहा नहीं हो सकता, या कोई छोटा सा बच्चा नहीं हो सकता। यह आपके पास उपलब्ध सभी एक वर्षीय मेरहों में से सबसे अच्छा मेरहा होना चाहिए, स्वस्थ, जीवंत, बिना चोट वाला, बिना दाग वाला।
पद 3 और 4 में यह समझाया गया है कि यहां पर सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक घराने से एक मेरहे का वध किया जाता है। यदि घराना छोटा है तो दूसरे छोटे घराने को एक मेरहे को साझा करना चाहिए। परमेश्वर अपने प्राणियों के जीवन को महत्व देता है। ये मेरहे निर्दोष थे, उन्हें मानव जाति के पापी स्वभाव के कारण मारा जा रहा था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आवश्यकता से अधिक मेरहे मारे जाएं और उनका मांस बर्बाद हो। हम पद 5 में पाते हैं कि कानूनी तौर पर भीड़ की जगह नर बकरी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और पद 6 में हालांकि मेरहे को फसह से 4 दिन पहले चुना जाना चाहिए, लेकिन उसे फसह की शाम तक नहीं मारा जाना चाहिए, जिसे परमेश्वर निशान की 14 तारीख को होने के लिए कहता है।
एक और स्पष्टीकरण के लिए, समय ईसाई फसह केवल कभी कभी यहूदी फसह के साथ मेल खाता है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले ईसाई फसह गुड फ्राइडे 9 अप्रैल को था। पेसाच असली फसह, जो निशान 14 है, 6 अप्रैल को था। ईसाइयों ने बाइबल के फसह को राजनीतिक रूप से आधारित फसह में बदल दिया, क्योंकि प्रारंभिक गैर यहूदी चर्च बिशपों और फिर 4वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के आदेशों के कारण यह निर्णय लिया गया था कि फसह हमेशा ईस्टर से पहले शुक्रवार को मनाया जाएगा, और इसे फसह नहीं बल्कि गुड फ्राइडे कहा जाएगा, और ईस्टर हमेशा रविवार को मनाया जाना था। खैर, चूंकि यहूदी कैलेंडर और आधुनिक जूलियन कैलेंडर मेल नहीं खाते हैं, और चूंकि परमेश्वर ने फसह के लिए गिनतीत्मक तिथियां दी थीं, न कि सप्ताह के निश्चित दिन, तो यह केवल हर कुछ वर्षों में होता है कि ईसाई फसह वास्तव में निशान की 14 तारीख को होता है, वही सटीक तिथि जो परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 12 में निर्धारित की है। क्या आप इसे समझते हैं? उदाहरण के लिए, 31 अक्टूबर को हमेशा हेलोवीन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन एक साल 31 अक्टूबर सोमवार को पड़ता है, दूसरे साल मंगलवार को, तीसरे साल बुधवार को, और इसी तरह आगे भी। हेलोवीन को एक संख्यात्मक तिथि दी जाती है, न कि सप्ताह का कोई दिन जैसे शुक्रवार या शनिवार। फसह, जैसा कि हम यहां निर्गमन में देखते हैं, को भी एक संख्यात्मक तिथि दी गई है, न कि सप्ताह का दिन।
बात यह है, मिस्र में स्थापित फसह एक प्रकार है, यह आने वाली चीजों की एक छाया भी है। यह निश्चित रूप से मृत्यु से वास्तविक और वास्तविक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मूल रूप से मिस्र में। लेकिन 1400 साल बाद मसीह ने फसह को पूर्ण अर्थ दिया, जब वह स्वयं फसह बन गया, यानी बलिदानी फसह मेरहे बनकर हमारे द्वारा परमेश्वर पर भरोसा करने और प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक रूप से यीशु के रक्त को अपने घरों, हमारे शरीर के चौखटों पर लगाने से हम उस मृत्यु के लिए पारित हो जाते हैं जो हमारे पापों के लिए हमारी उचित मजदूरी है। निर्गमन में फसह का यही आध्यात्मिक अर्थ था, लेकिन यह केवल यीशुआ की मृत्यु पर प्रकट हुआ। सभी बाइबल पर्व, जिन्हें स्पष्ट रूप से हमें चर्च द्वारा अप्रचलित और अप्रासंगिक मानकर अनदेखा करना सिखाया गया है, क्योंकि वे पुराने नियम, जिसे यह समाप्त माना जाता है, का हिस्सा है, परमेश्वर द्वारा हमें उनकी अंतिम पूर्ति के लिए सिखाने और तैयार करने के उद्देश्य से प्रकारों, मॉडलों और स्मरणोत्सवों के रूप में स्थापित किया गया था। और यद्यपि जब ये पर्व पहली बार स्थापित हुए थे, तब इसराइलियों के लिए इनका एक वास्तविक और ठोस उद्देश्य और अर्थ था, फिर भी भविष्य में इनमें से प्रत्येक पर्व का एक पूर्ण अर्थ होगा। अब यीशुआ को फसह के दिन संयोग से नहीं मारा गया था। पवित्र पिता ने हमारे उद्धारकर्ता को फसह के दिन, निशान के 14वें दिन, फसह के त्योहार को उसके पूर्ण अर्थ में लाने के लिए मार डाला। इसलिए मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है कि यहूदी, जो अभी तक यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं, वे अनजाने में उनकी मृत्यु के दिन का जश्न मनाते हैं, जो उनके लिए ठीक उसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था, और वे इसे ठीक उसी तरह और उसी दिन मनाते हैं जैसा कि परमेश्वर ने आदेश दिया है। लेकिन हम गैर यहूदी चर्च ऐसा नहीं करते।
लगभग 1700 साल पहले एक रोमन राजनेता द्वारा स्थापित परंपरा के कारण मूर्ति पूजक सूर्य उपासकों और यहूदी विरोधी चर्च बिशप के साथ समझौता करने के लिए हम गैर यहूदी विश्वासियों ने परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्मरणों को त्याग दिया है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं फसह के लिए परमेश्वर के दिव्य अध्यादेश का पालन करना पसंद करूंगा, न कि मानव निर्मित राजनीतिक और सामाजिक एजेंडों के इर्द गिर्द बने मानव निर्मित सिद्धांतों का, विशेष रूप से इस बेजोर स्मारक पर्व के संबंध में। पद 8 से 11 से परमेश्वर इस बारे में और अधिक विवरण जोड़ता है कि इसराइलियों को फसह की रस्म को किस तरह से आगे बढ़ाना है। एक साल के मेरे को बिना किसी दोष के चुनने और यह सुनिश्चित करने के अलावा कि मेरे को खाने के लिए पर्याप्त लोग मौजूद हों, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह बर्बाद न हो, परमेश्वर निम्नलिखित जोड़ता है। पहला बलि, मेरे का वध और तैयारी शाम के समय अर्थात गोधूली के समय होनी थी। दूसरा, खून को एक बेसिन में इकट्ठा किया जाना था। तीसरा, कुछ खून दरवाजे के दोनों तरफ दरवाजे के चौखटों पर और दूसरी तरफ लगाया जाना था, चौखट दरवाजे के ऊपर की क्रॉस बीम। चौथी, हिस्सॉप की एक शाखा को खून के बर्तन में डुबाकर जाना था और फिर उसे द्वार पर रंग लगाकर चित्रित किया जाना था। पांचवें, उस समय जब यहोवा मिस्र में घूम रहा था और मिस्रियों के पहलौठे को मार रहा था, उस समय उन्हें फसह का भोजन खाना था। छठे भोजन में सबसे पहले मेरहे को शामिल किया जाना था। उसे आग पर भूनना था, पूरा मेरहा, सिर झुरा हुआ, पूरी तरह से पका हुआ और पानी में उबाला नहीं जाना चाहिए। सातवीं, अखमीरी रोटी अर्थात बिना खमीर की बनी रोटी खानी थी। आठवीं, करवी जड़ी बूटियां खानी थी। नौवें, मेरहे का जो भी हिस्सा बचा हुआ था उसे सूर्योदय से पहले पूरी तरह जला दिया जाना था, नष्ट आग से। दसवें, उन्हें इसे खाने के लिए तैयार रहना है, पैरों में चप्पल पहनकर कार्रवाई के लिए तैयार रहना है, मिस्र छोड़ने के लिए तैयार रहना है। फसह अनुष्ठान के इन भागों में से प्रत्येक का आध्यात्मिक अर्थ था। फसह मेरहे ने निश्चित रूप से मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाले यीशु मसीह की ओर संकेत किया। ये करवी जड़ी बूटियां इसराइलियों की मिस्र में सदियों तक की कठोर कैद और कठिन परिश्रम की करवी याद दिलाती थीं। अखमीरी रोटी ईमानदारी और सच्चाई की बात करती है। बाइबल में खमीर पाप और धोखे का प्रतीक है। मीठी अखमीरी रोटी के साथ खाई जाने वाली करवी जड़ी बूटियां फसह के पर्व की करवी मीठी घटना को दर्शाती हैं, उन लोगों के लिए मृत्यु जो क्षुद्ध होती के पात्र थे मिस्र, दूसरों के लिए जीवन जिन्हें प्रभु ने बाकी लोगों से अलग रखा है इसराइली। इसकी अंतिम पूर्ति में इसका अर्थ था हमारे छुरौती यीशु के लिए मृत्यु और अन्य विश्वासियों के लिए जीवन। मेरहे की सेवा पूरी तरह से की जानी थी और जैसा कि हम अध्याय 12 में बाद में देखेंगे, जानवर की एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जानी थी। यह मसीह का एक अग्रदूत था जिसकी मृत्यु के समय उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई थी। हालांकि रोमन क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान पीरीत के पैर की हड्डियां तोड़ना प्रथागत था, लेकिन उन्होंने यीशु के साथ ऐसा नहीं किया। हिस्सोप की शाखा शुद्धि का प्रतीक थी। हम इसे नया नियम में कोरही की सफाई और भजन 51 में देखेंगे। वैसे कोई भी निश्चित नहीं है कि हिस्सोप वास्तव में कौन सा पेड़ या झाड़ी थी। यदि आप आज किसी इजरायली बाजार में जाते हैं तो वे हिस्सोप नामक एक मसाला बेचते हैं, लेकिन वे आपको खुलकर बताएंगे कि यह निर्गमन में वर्णित हिस्सोप जैसा नहीं है। अधिक से अधिक विद्वान सोचते हैं कि यह उस प्रजाति का है जिसे हम ओरिगैनो कहते हैं। मूसा और इसराइल को दिए जा रहे दिव्य अध्यादेशों को पद 12 में कुछ समय के लिए बाधित किया गया, जब परमेश्वर यहोवा ने फसह की रात को क्या होने वाला है इस बारे में दोहराया कि वह स्वयं मिस्र की भूमि पर आगे बढ़ेगा, मिस्र के सभी पहलौठों को मार डालेगा और उन सभी देवताओं को नीचा दिखाएगा जिनके आगे मिस्रवासी झुकते थे।
उस रात के दृश्य की केवल कल्पना ही की जा सकती है। छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने किशोर, वयस्क बुजुर्ग अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी सांसें रुक जाती हैं और उनके दिल काम करना बंद कर देते हैं। उन्हें पुनर्जीवित करने का कोई तरीका संभव नहीं था। सड़कों पर लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के मर गए। क्या आप मानसिक रूप से कल्पना कर सकते हैं कि घबराए हुए मिस्र के लोग मदद के लिए अपने मूर्ति पूजक पुजारियों के पास भाग रहे थे, डर और हताशा में अपने घरेलू देवताओं से उन्हें बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने विशेष रूप से फिरौन को निशाना बनाया क्योंकि उसके अपने घराने ने अपने पहिलौठों को खो दिया था। मिस्र के सिंहासन का उत्तराधिकारी मर गया। मिस्र के एक छोर से दूसरे छोर तक चरागाहों में सैकड़ों हजारों मवेशी, शायद लाखों, मृत अवस्था में पड़े थे, जिसका मतलब था कि कई मिस्र वासी भूखमरी के शिकार हो रहे थे। परमेश्वर अजेय, अविचल, बिना किसी क्षमा याचना के भयानक न्याय को ला रहा था जिससे कोई बच नहीं सकता था, सिवाय इसके कि इसराइल और उन सभी लोगों के लिए जो इसराइल से जुड़े थे, जो मेरहा के खून पर निर्भर थे। क्योंकि पद 13 में यहोवा कहता है कि जब वह इसराइल के घरों के दरवाजों पर मेरहे का खून देखेगा तो वह उस घर और उसके अंदर के सभी लोगों को छोड़ कर चला जाएगा। वे अपने पहलौठे की मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे, जैसा कि उनके सभी अविश्वासी मिस्री पड़ोसियों के साथ हुआ है।
यह कितना भयावह विचार है। और मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जो हर दिन होती है। आज सुबह जब हम उठे और आज रात को जब हम सोएंगे, उस समय के बीच इस धरती पर लाखों लोग हमेशा के लिए मर जाएंगे, और इससे भी बुरा, हमेशा के लिए। और ऐसा ही कल, परसों और उसके बाद के दिन भी होगा। फिर भी खुद को परमेश्वर के इज़राइल से जोड़कर आप इससे बच सकते हैं। यीशु पर भरोसा करके परमेश्वर पर भरोसा करें और आप परमेश्वर के इज़राइल में शामिल हो गए हैं। मसीह पर भरोसा करें, अपने घर पर उसका खून छिड़के अपने शरीर पर, और आपको जीवन मिलेगा। ऐसा ना करें और अनंत मृत्यु निश्चित परिणाम है। बीच में कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई तटस्थता नहीं है और कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। पद 14 में परमेश्वर स्पष्ट करता है कि यह दिन, फसह, निसान का 14वां दिन हमेशा के लिए एक स्मारक होगा। पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो हमेशा का मतलब हमेशा के लिए था, जब तक कि किसी रोमन बिशप या सम्राट ने अन्यथा निर्णय नहीं लिया।
15वें पद से शुरू होकर 20वें पद तक परमेश्वर इसराइलियों को निर्देश देता है कि भविष्य में सभी फसह कैसे मनाए जाए। अब वास्तव में यह बदलाव से ज्यादा एक अतिरिक्त घटना है। इस घटना को अखमीरी रोटी का त्योहार या अखमीरी रोटी का त्योहार कहा जाता है। यह आदेश देता है कि फसह के संबंध में 7 दिनों तक, फसह तकनीकी रूप से एक दिन का आयोजन है, निसान के 14वें दिन से शुरू होकर इसराइल को खमीर वाली रोटी नहीं खानी है। इससे भी ज्यादा, हर घर को अपना सारा खमीर या ऐसी कोई भी चीज फेंक देनी है जिसमें खमीर हो।
7 दिनों की अवधि के दौरान खमीर वाली कोई भी चीज खाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। पद 19 में कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे काट दिया जाएगा। काट दिया जाना के लिए इब्रानी शब्द करेट है, और इसका मतलब है शरीर के किसी अंग को काटना या खत्म करना, या किसी चीज को काटना, जैसे पैर को काटना। इसका मतलब स्थायी अलगाव हो सकता है, या बाइबल में अक्सर दैवीय विनाश और मृत्यु का संकेत मिलता है। इसलिए यह काट दिया जाना विद्रोही बच्चे के लिए समय सीमा के समान नहीं है। नहीं, यह सजा के लिए निर्धारित समय के साथ जेल की सजा या समाज से अस्थायी रूप से अलग होने जैसा है। संभवतः इसका मतलब यह नहीं था कि अधिकांश मामलों में प्रभावित व्यक्ति को मार दिया जाना था। फिर भी निस्संदेह कई बार इसका परिणाम मृत्युदंड होता था। लेकिन इसका मतलब यह था कि काटे गए व्यक्ति को इज़राइल से, उसके अपने कबीले से, उसके परिवार से, और सबसे गंभीर रूप से प्रभु से निर्वासित कर दिया जाता था। अब आइए स्पष्ट करें, यहां यहोवा बोल रहा है। तो यह शरीर की सजा यह अपने कबीले द्वारा त्यागे जाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर द्वारा त्यागे जाने के बारे में है। इसराइल का हिस्सा होने के आध्यात्मिक लाभ समाप्त हो गए हैं। इस बात पर भी ध्यान दें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति, बाइबल के अपने संस्करण में इसे कैसे व्यक्त किया गया है। विदेशी है या इज़राइल का नागरिक। मैं इसे इस अर्थ में कहना चाहता हूं कि इसका मतलब यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मूल निवासी हैं, जन्मजात इसराइली हैं या आप गैर इसराइली जनजाति से हैं, लेकिन अपने पुराने विदेशी जनजाति को छोड़कर और इसराइल की कबीलाओं में से किसी एक के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करके इसराइल में शामिल हो गए हैं। यह सिद्धांत कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक नहीं है, यहां स्पष्ट किया गया है। हम पुराने नियम और नए नियम में कई जगहों पर यही संदेश पाएंगे। आपके और मेरे लिए इसका क्या मतलब है? जो गैर इसराइली हैं, मसीह के खून की वाचा के माध्यम से इसराइल में शामिल किए गए हैं ताकि हम इसराइल की वाचाओं में भाग ले सकें। यह है कि परमेश्वर स्वाभाविक रूप से जन्मे लोगों के बीच कोई आध्यात्मिक भेद नहीं करता है। इसराइली बनाम विदेशी जो अब तक इसराइल के बाहर पैदा हुए थे, उन्हें इसराइल में शामिल कर लिया गया है। क्या प्रभु यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच भौतिक भेद करना जारी रखते हैं? बेशक, और संत पौलुस ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझाया है।
पद 21 से आरंभ करते हुए मूसा ने इसराइल के पुरनियों को वह सब बताना, वास्तव में दोहराना आरंभ किया जो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था, ताकि पुरनिय प्रत्येक इसराइली तक संदेश पहुंचा सके। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम उस समय की इसराइली जनसंख्या का मानसिक चित्र देखें। मिस्र में लगभग 3 मिलियन इसराइली रहते थे, जो मिस्र की कुल आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा था। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि यह संख्या 2 मिलियन के करीब थी, जबकि अन्य का कहना है कि यह 3.5 या 4 मिलियन के करीब थी। कुछ सबसे उदारवादी कहते हैं कि बाइबल द्वारा दी गई गिनती बहुत गलत है और उस समय केवल कुछ हजार इसराइली थे, जो कि मूर्खतापूर्ण है और स्पष्ट रूप से उस युग के लिए सामान्य और प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को चुनौती देती है। हम दूसरे पाठ में इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसराइली मुख्य रूप से निचले मिस्र में रहते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। नील डेल्टा के पूर्व में एक क्षेत्र में, जिसे गोशेन कहा जाता है, लेकिन बिना किसी संदेह के हजारों हजार इसराइली थे जो गोशेन छोड़कर पूरे मिस्र में बिखरे हुए थे। 430 साल पहले इसराइली केवल चरवाहों के रूप में आए थे, लेकिन अब कई व्यापारी, किसान और व्यापारी थे, और अधिकांश मिस्र द्वारा अपने राजमार्गों, सरकारी इमारतों और सैन्य किलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले हर प्रकार के शिल्पकार थे। इब्रानियों और मिस्रियों के बीच अंतरजातीय विवाह हुए थे, हालांकि दोनों पक्षों ने इसे हतोत्साहित किया था। कुछ इसराइली गोशेन और सिनाई के बीच की सीमा पर रहते थे और कुछ सिनाई में ही रहते थे। इसलिए जब मूसा ने लोगों के प्रतिनिधियों, बुजुर्गों को मिस्र छोड़ने की तैयारी करने के निर्देश दिए, तो कुछ लोगों को अपने निवास स्थान पर वापस लौटना पड़ा, ताकि बीच में रहने वाले इसराइलियों के समूह को यह संदेश दिया जा सके। इसका यह भी अर्थ है कि जब मूसा के नेतृत्व में इसराइलियों का विशाल समूह गोशेन से निकला, तो वे रास्ते में इसराइली भटके हुए लोगों और गैर इसराइली कबीलाओं के विदेशियों के साथ शामिल हो गए, जिन्होंने सुना था और देखा था कि इसराइल के परमेश्वर ने क्या किया था, और वे इसराइल में शामिल होना चाहते थे। कुछ पदों में हम वास्तव में इस मुद्दे का उल्लेख देखेंगे। 25वें और 27वें पद में हमारे मुख्य शब्दों में से एक सेवा उभर कर जाता है। हालांकि संभवतः आपका अनुवाद इस समारोह का पालन करें या इस संस्कार का पालन करें या इसके स्थान पर ऐसा कुछ कहेगा, अर्थात 25वें पद में शाब्दिक रूप से यह कहा गया है आपको यह सेवा करनी है, और 26वें पद में जब आपके बच्चे आपसे पूछें यह सेवा आपके लिए क्या मायने रखती है। सेवा शब्द के उपयोग को देखने का महत्व परमेश्वर का इरादा है कि हम देखें कि इसराइल दासता, मजबूर मजदूरों मिस्र के लिए दासों के रूप में सेवा में आगे बढ़ रहा है, प्यार और विश्वास के आधार पर यहोवा के प्रति एक स्वैच्छिक निष्ठा। और बेशक यह एक नमूना है, क्योंकि जब हम यीशु के द्वारा यहोवा को अपनी सेवा देते हैं तो हम अपनी बुरी प्रवृत्तियों और शैतान की दासता से दूर हो जाते हैं। पद 29 में मिस्र के पहलौठों के लिए मृत्यु की उस रात की भयावहता का एक बहुत ही संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मैं इस बात पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता कि जिस क्षण यहोवा मिस्र के पहलौठों पर अनंत मृत्यु की सजा सुना रहा था, उसी क्षण वह इज़राइल को बचा रहा था। मिस्र अभी भी चुने हुए आध्यात्मिक अंधकार की स्थिति में था, जबकि इज़राइल परमेश्वर के ज्ञान में आनंदित था, जबकि इज़राइल दावत और पूजा कर रहा था और खुशी से जश्न मना रहा था। मिस्र भय से जम गया था और एक राष्ट्रीय भावना में था, मृतकों की भारी गिनती से शोक की स्थिति, क्योंकि ऐसा एक भी घर अर्थात एक भी परिवार नहीं था जिसमें कोई ना कोई मरा हो। पद 31 में अब तबाह और टूटे हुए फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाया और उन्हें मिस्र छोड़ने का आदेश दिया, सभी इसराइलियों के साथ बिना किसी पूर्व शर्त के। उसने कहा, अपनी सारी संपत्ति लेकर चले जाओ, लेकिन उसने मूसा से भी विनती की कि वह उसे आशीर्वाद दे। निस्संदेह आशीर्वाद का उद्देश्य मृत्यु के उस दिव्य अभिशाप को दूर करना था जिसने उसके अपने घर और पूरे मिस्र को जकर लिया था। मिस्र के लोग पूरी तरह से सहमत थे। उन्होंने इसराइल पर दबाव डाला कि वह चले जाए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे।
यह वाकई दिलचस्प है। भले ही मिस्र के लोग यहोवा को पूरी तरह से स्वीकार करते थे और अब ये यहोवा और उसकी शक्ति के बारे में जानते थे, शायद इस कमरे में हम सभी से बेहतर, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसने कभी भी सभी मिस्रियों को मारने की धमकी नहीं दी, अन्यथा हम सभी मर जाएंगे, वे डरते थे, केवल ज्येष्ठ पुत्रों को। परमेश्वर के बारे में जानने और परमेश्वर को जानने में बहुत बड़ा अंतर है, और परमेश्वर को सुनने और परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर पर भरोसा करने में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर के बारे में जानना, यहां तक कि उसे सुनना और यह मानना कि वह है, केवल एक बौद्धिक अभ्यास है, अगर इसके साथ परमेश्वर यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानना और उस पर भरोसा करना शामिल ना हो।
इसराइलियों ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लिया, जिसमें बिना पके हुए आटे का आटा, वह खास बैग जिसमें कोई खमीर नहीं था, और अपने बैग में उन्होंने सोने और चांदी को जमा कर लिया जिसे उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर मिस्र से छीन लिया था। अब परमेश्वर अपने लोगों को इस कुचले हुए लोगों मिस्रियों से सोना और चांदी लेने का आदेश क्यों देगा? खैर, एक बात यह है कि यह परमेश्वर के पवित्र स्थान के निर्माण के लिए और संदूक के लिए आवश्यक था, जिसमें 10 आज्ञाओं की पत्थर की पटियाएं रखी जानी थी, और मेनोराह और परमेश्वर की सेवा के अन्य उपकरणों के लिए। दूसरे के लिए यह उन लोगों से 2 शताब्दियों की दासता, जबरन श्रम के लिए प्रतिपूर्ति थी जो उनसे नफरत करते थे। अब इसराइलियों ने मिस्र कब छोड़ा? फसह के दिन निसान 14 को। याद रखें, इब्रानी गणना के अनुसार एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है। उन्होंने रात के समय अपना फसह का भोजन समाप्त किया और अगली सुबह सूर्योदय के समय, जो अभी भी वही दिन था, उन्होंने अपना सामान बांधा और चले गए। क्या आपको इसका महत्व समझ में आया? हमारा व्यक्तिगत फसह, अनंत मृत्यु से हमारा उद्धार, वह क्षण है जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं और अपने शरीर के चौखटों पर उसका खून छिड़कते हैं। लेकिन उसे स्वीकार करने के तुरंत बाद हम पाप के बंधन को छोड़ने के लिए भी स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें दासता छोड़ने और परमेश्वर की सेवा शुरू करने के लिए कुछ और होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या यह बढ़िया नहीं है? पद 37 हमें बताता है कि वे रामसेस से चले गए और सुकोट में रुके। रामसेस पिथोम के ठीक बगल में था और उन्हें बाइबल में महान भंडार शहर के रूप में जाना जाता था। वे विशाल वाणिज्यिक और सरकारी गोदाम जो इसराइलियों की पीठ पर बनाए गए थे। हम ठीक ठीक जानते हैं कि रामसेस और पिथोम कहाँ हैं, गोशेन की भूमि में, और उन्हें पुरातत्व द्वारा खुदाई की गई है। सुकोट एक और मामला है। वास्तव में वह कहाँ है, यह उतना ही अटकलें हैं जितना कि निर्गमन का सटीक मार्ग।
हम अगली बार इस पर काम शुरू करेंगे।